हरे कृष्णा
नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की
जय।
तो आप सबके पास एक गीत होगा जिसकी रचना लोचनदास ठाकुर ने की है, हमारे संप्रदाय के बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। तो हम सब गाएंगे और नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है उसके ऊपर कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, आवे मार शून्य गीताय नगरे
I'm gonna
कोई व्यक्ति चैतन्य और निताई का शरण ग्रहण कर सकता है या उनके प्रति सेवा की जो दिव्य भावना है उसको विकसित कर सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, हे निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाएते नहीं। आध्यात्मिक जीवन में कोई व्यक्ति राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करना चाहता है या राधा कृष्ण अपने जीवन का धन बनाना चाहता है तो उसके लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा परम आवश्यक है। हेलो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाए देना है। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण की जो प्राप्ति है वो असंभव है और राधा कृष्ण को समझना हमारे लिए बहुत दूर है, बहुत कठिन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने से पहले व्यक्ति को गौर निताई को समझना होगा। जितना अधिक हम गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के कार्यकलापों से अवगत होते हैं, उसको समझते हैं, उतनी ही मात्रा में हम राधा कृष्ण के प्रति तीव्र आकर्षण, तीव्र अनुराग अपने हृदय में विकसित कर पाते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आज के दिन आविर्भूत होते हैं। नित्यानंद का मतलब ही है जो सदैव किसमें रहते हैं, आनंद में रहते हैं। नित्य आनंद में जो रहते हैं वो नित्यानंद प्रभु है और ऐसे नित्यानंद प्रभु सदैव नित्य आनंद में रहने का कारण क्या है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के रस में वो सदैव निमग्न रहते हैं। गौरांग महाप्रभु के रस में निमग्न होने का मतलब है चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा है उसका पालन करने में जो नित्यानंद प्रभु है वो सदैव तत्पर रहते हैं। इस भौतिक जगत में भी हर एक जीव अपने माँ के घर से बाहर निकलता है, निकलने से पहले अंदर रहता है, तभी से ही आनंद की लालसा करता है और बाहर आकर बहुत विशाल आनंद की वो प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे इस भौतिक जगत में संबंध बनाता है, चीजों को एकत्रित करना लगता है, आयु उसकी बढ़ती रहती है, फिर भी वो दिव्य और नित्य शाश्वत आनंद से रहित रहता है, दूर रहता है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जीव का जिस प्रकार से वैदिक शास्त्र कहते हैं जीव आनंद व्यासा, कि जीव का शाश्वत स्वभाव है कि वह सदैव आनंद में है। आनंद जीव से या आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा जो जीव है वो क्या करता है, अहंकार मत है या निदाय पद पासरिया असत्य सत्य करी वाणी। अहंकार के कारण, भौतिक भोग की तीव्र लालसा के कारण जो जीव है नित्यानंद प्रभु के चरणों से दूर बना रहना चाहता है या भगवत चरणों के अलावा, भगवत आश्रय के अलावा भौतिक वस्तु, भौतिक शरीर, भौतिक व्यक्ति, भौतिक स्थान का वो शेल्टर ग्रहण करता है, जिसके कारण क्या है, असत्यरा सत्य करे माने। यह हमारी बीमारी है। हमारी बीमारी क्या है, दुख की, जो असत वस्तु है उसको हमने सत मान लिया है और जिसके कारण इस जड़ जगत में हम नाना प्रकार के कष्टों से दुखी है। इसलिए भक्तिरोध ठाकुर अपने गीत में कहते हैं, असत वस्तु भालो लागे रे, मेरी प्रॉब्लम क्या है, हे कृष्ण मुझे जो असत वस्तु है ना वो बहुत अच्छी लगती है, यही मेरे बीमारी का मूल कारण है। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं और जो असत पथ पर चलने वाले जीव है उनको अपनी ओर खींचते हैं। अपनी ओर खींचने का मतलब है नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है, नित्यानंद कौन है, साक्षात बलराम है। तो नित्यानंद प्रभु साक्षात आदि गुरु है या जिनको कहा जाता है समष्टि गुरु शास्त्रों में। समष्टि मतलब सब सारे गुरुओं के जो मिल स्रोत है और उनसे जितने भी गुरु ग्रंथ है वो व्यष्टि गुरु है, इंडिविजुअल गुरु है, उनके ही प्रतिनिधि है। इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु का कार्य जिस प्रकार से भौतिक जो जीव है उसके हृदय में भोग की भावना है, उस भोग की भावना को सेवा की भावना में जो परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है वो वास्तव में सदगुरु है या आध्यात्मिक गुरु है। तो नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम है वो क्या करते हैं, असत पथ पर चलने वाले जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु का मूल नाम क्या है? संकर्षण है, बलराम है। संकर्षण का मतलब जो कर्षति, खींचते हैं। इसलिए बलराम अपने साथ दो आयुध रखते हैं। एक क्या रखते हैं? वो खींचने के लिए हल रखते हैं, हल डालते हैं और खींच लेते हैं अपनी ओर। जैसे जब बलराम का विवाह रेवती से हुआ था, अभी रेवती वो तो बहुत उनकी हाइट तो सत्ययुग की युवती थी, वो कई लंबी चौड़ी थी, कई किलो कई फुट ऊंची होगी, कई मीटर ऊंची होगी, फुट नहीं। तो जब बलराम के पास लाया गया, देखा इतनी हाइटेड है, इतना छोटा सा हो। हाँ, वर वधु क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। उन्होंने अपना हल ले लिया, लगाया ऊपर, ऐसे नीचे खींच लिया, तो बिल्कुल हाइट मैच हो गई। तो वैसे ही बलराम जो ये नित्यानंद प्रभु मूल रूप से बलराम है, अपने साथ इन आयुधों को रखते हैं, जिसके द्वारा जीवों को कृष्ण की ओर खींचते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का कार्य ही है असतो वाम सद्गमयम, असत स्थान से दिव्य या प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का जो कार्य है वो नित्यानंद प्रभु का है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं आज के दिन के बारे में, नित्यानंद जन्म माघी शुक्ल त्रयोदशी गौर चंद्र प्रकाश फाल्गुन पौर्णमासी एते गये दुई तिथि करिल सेवान कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधन। तो इन फेस्टिवल्स को मनाने के लिए वृंदावन दास ठाकुर हमें प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव है, वो माघ महीने की जो शुक्ल त्रयोदशी है उस दिन हुआ था, और गौर चंद्र चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है फाल्गुन की जो पूर्णिमा है। एते गये दुई तिथि करिल सेवन, यदि कोई निष्ठावान भक्त या साधक इन दो तिथियों को बहुत ही गंभीरता से अपने आध्यात्मिक जीवन में स्वीकार करता है और उनका सेवन करता है, इन तिथियों का सेवन करने का मतलब है गौर और नित्यानंद की जो महिमा है उसका गुणगान करना। गौर और नित्यानंद की महिमा में अपने चित्त को, अपने मन और हृदय को पूर्ण रूप से डुबो देना। कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो क्या होगा? वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वो कहते कृष्ण भक्ति हाय खंडे अविद्या बंधन। उस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रति जो अहेतुकी और अप्रतियता, जो भगवत भक्ति है, वो स्थापित हो जाती है और अविद्या का जो बंधन है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे पंच तत्व है, पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नवाभि भक्त शक्तिकम, दो पंच तत्व मंत्र है, एक तो ये और दूसरा कौन सा है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? भक्त रूप में अवतरित होते हैं। और ऐसे जो महाप्रभु भक्त रूप है, वो भक्त रूप जो अपना विस्तार करते हैं, तो वो नित्यानंद प्रभु है, भक्त स्वरूप भगवान श्री चैतन्य के पर्सनल एक्सपेंशन। और फिर उनके एक्सपेंशन है भक्त अवतार अद्वैत आचार्य, और भक्ताख्यम कौन है? श्रीवास ठाकुर भक्त है, शुद्ध भक्त। और ये जो शक्ति है भगवत शक्ति, वो गदाधर पंडित। तो इस प्रकार से भगवान इन पंच तत्वों में आते हैं, और केवल उनके आने के कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण होता है कि भगवत प्रेम का जो रस है उसका आस्वादन करना, और दूसरा है हर जीव को भगवान के धाम वापस ले जाना, या भगवत भक्ति की जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित करना। ये पंच तत्व का प्रमुख कारण है, यह प्रमुख कार्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपना विस्तार इन रूप में करते हैं, और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं वो बहुत अनंत और अगाध है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम भगवान को समझने की योग्यता प्राप्त करते हैं।
नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न वेदया न बहुना श्रुते न। भगवत प्राप्ति करने के लिए किसी के पास शारीरिक बल है तो उससे वो प्राप्त नहीं कर सकता, या किसी के पास बहुत अच्छा प्रवचन देने का सामर्थ्य है, बहुत ज्ञान है, बहुत षड्गुण षड् ऐश्वर्य क्यों ना हो, उनके द्वारा भगवान को वो प्राप्त नहीं कर सकता। उसके पास आध्यात्मिक बल की आवश्यकता, आध्यात्मिक बल चाहिए, और आध्यात्मिक बल के जो सोर्स है वो कौन है, नित्यानंद प्रभु है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर एक श्लोक में कहते हैं, जय जय नित्यानंद शरण अरविंद जहा है ते पाइनु श्री राधा गोविंद। वो कहते हैं कि जय जय नित्यानंद शरणारविंद, मैं नित्यानंद प्रभु के शरणारविंदों का जय जयकार कर रहा हूं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की महिमा को कोई व्यक्ति जितना अपने जीवा से गाता है, उसका उच्चारण करता है और सारे जगत को फैलाता है उनकी महिमा, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से राधा गोविंद के जो चरण कमल है वो प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, जिस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं से भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत अधिक मधुर है, उसी प्रकार से बलराम की लीलाओं से भी नित्यानंद प्रभु की लीलाएं क्या है, बहुत अधिक मधुर है। जैसे प्रभुपाद जब अटलांटा जॉर्जिया में गौर निताय की उन्होंने स्थापना की और प्रवचन देने के लिए बैठे और उन्होंने एक गीत गाया, परम करुणा बहु द्विजन निताय गौर चंद्र, ये परम करुणा शब्द प्रभुपाद जैसे उच्चारण करने लगे तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गौर निताय अल्टर में उन्होंने अभी उन्होंने उनकी स्थापना की थी और वो गीत गाते गाते प्रभुपाद रोने लगे इस विचार से कि अरे ये महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु कितने अधिक करुणामय है, इतने दूर म्लेच्छ और यवनों का उद्धार करने के लिए इस पाश्चात्य जगत में अवतरित हुए हैं। इस बात को सोचते सोचते प्रभुपाद का हृदय भगवान चैतन्य और नित्यानंद की जो अहेतु की कृपा की भावना है इसके प्रति भर उठा और प्रभुपाद इस गीत को गाते गाते क्रंदन करने लगे। अब बलराम इतने दयालु नहीं है, बलराम बिल्कुल वैष्णव एटिकेट पालन नहीं करोगे तो बलराम आपको दंड दिए बिना नहीं रह सकते। बलराम जो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा नहीं, अभी दुर्योधन के वो गुरु है, पांडव के तो बड़े क्लोज है, तो उन्होंने कहा कौन सा पक्ष लो, इससे अच्छा है तीर्थ यात्रा करने का बहाना मार के चला जाता हूँ, 18 दिन के बाद आऊंगा, ट्रैवलिंग में जाता हूँ, यात्रा करता हूँ। तो बलराम चले गए, तो चलते चलते नैमिषारण्य में गए हैं, वहां रोमहर्षण सूत भागवतम का प्रवचन दे रहे थे, जोर शोर से बोलते जा रहे थे, 88,000 ऋषि वहां बैठे थे। अभी साक्षात बलराम आए हैं, जिनकी महिमा का वर्णन कर रहे हो, जिनका जिनके गुणों का गान कर रहे हो, ऐसे साक्षात भगवान वहां प्रवचन के बीच में आ रहे हैं सीधा, तो जो प्रवचन करता है ये जो एटिकेट या सदाचार क्या है कि उसे उठना चाहिए उसके स्वागत और आदर सम्मान के लिए। जैसे सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी ने बहाना मारा कि मैं ना बहुत बीमार हूं और घर में 18-20 ब्राह्मणों को बुलाकर भागवत कथा हो रही है पूरे दिन भर, और यदि कोई वैष्णव आ जाता था, कभी कभी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी अपने घर में उन्होंने राम केले में एक स्थान बनाया था, आज भी है, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली व्यास आसन वगैरह था, कभी कभी सनातन गोस्वामी भी भागवतम पर बोला करते थे साकर मल्लिक के रूप में या दबीर खास के रूप में, दोनों का जो पूरा मुस्लिम नाम था। और कोई महा कोई वैष्णव अंदर प्रवेश कर रहा हो तो तुरंत उठ जाते थे और सनातन गोस्वामी उनको प्रणाम करते थे और फिर से अपनी जो कृष्ण कथा है, कृष्ण की महिमा है, उसका गान करते थे। अभी बलराम ने जो प्रवेश किया, ये रोमहर्षण सूत उठाए गए, बलराम ने कहा बेटा तुम्हें बहुत अहंकार हुआ है, हम गए क्या लेके गए अपने हाथ में, घास का तिनका, घास का तिनका ले गया और उनको ऐसे मारा, व्यास आसन में प्रवचन करता कि ऑन द स्पॉट मृत्यु, सारे जो शिष्य ऋषि मुनि है वो चिंता में पड़ गए। तो मतलब बलराम बहुत एक प्रकार से देखा जाए कठोर है। वहां हस्तिनापुर गए हैं तो भीष्म आदि दुर्योधन आदि ने उनकी बात को नहीं माना तो पूरा हस्तिनापुर शहर को अपने जो हल के द्वारा कहा कि किसमें खींच रहे थे, यमुना में खींच रहे थे। तो इस प्रकार से बलराम बहुत अधिक कठोर है। जब वो राम घाट में मथुरा में लीला कर रहे थे बलराम, तो जब गोपियों के संग में रास क्रीड़ा में निमग्न थे तो उनकी इच्छा हो गई कि मुझे अभी जल क्रीड़ा करनी है, देखा यमुना बहुत दूर है, मैं क्यों जाऊं वहां। उन्होंने तो मदिरा का पान किया था, शहद का पान किया था, और उन्होंने सोचा मैं नहीं जाऊंगा, अब उस यमुना को मेरे पास आना चाहिए। यमुना को आदेश दिया तो यमुना ने माना नहीं, उन्होंने फिर गुस्से में आ गए, उन्होंने फिर से अपना आयु उठाया, यमुना को खींचा, मथुरा के पास जाएंगे तो यमुना खींची हुई है। इस प्रकार से बलराम हमेशा एक प्रकार से कठोरता को दिखाते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु, हाँ वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मार खाइले प्रेम दे, दयालु तो नहीं है। मतलब मार खाकर भी जो प्रेम प्रदान करता है उससे अधिक दयालु कौन हो सकता है। इस संसार में आपको कोई थप्पड़ मारे आज आप कहोगे थैंक यू प्रभु जी कितना अच्छा थप्पड़ मारा मुझे, ये आपको प्रसाद दे लीजिए, ये तो बहुत रेयरली है। ऐसे जो भक्त महाप्रभु की लीलाओं में हमें नजर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो वहां महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, और उस समय राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एक सर्कल में पीछे खड़े थे, और राजा के जो सेवक है हरिचंदन वो उनके साथ खड़े थे, और राजा के सामने ये जो पंचतत्व में जो शिवा ठाकुर है वो आगे खड़े थे, और महाप्रभु का नृत्य देखने में वो पूर्ण रूप से निमग्न हो गए थे। और राजा के आगे श्रीवास ठाकुर खड़े हैं, अभी राजा को बीच में दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, कौन नहीं महाप्रभु के सौंदर्य को देखना चाहेगा, कौन नहीं महाप्रभु के दिव्य नृत्य को देखना चाहेगा। तो ये देखते थे लेकिन ये डिस्टर्ब हो रहा था, श्रीवास ठाकुर थोड़े से ऊंचे होंगे, उनका सर बीच में आ रहा था, तो सेवक हरिचंदन अभी राजा का सेवक है तो थोड़ा साइड हो जाओ प्रभु जी, थोड़ा हट जाइए, मोटे प्रभु आप बड़े प्रभु पीछे खड़े हैं। तो उन्होंने पहले सोचा ठीक है कौन है, फिर जब दो बार तीन बार ऐसे कुछ किया तो पीछे देखा नहीं कौन खड़ा है, श्रीवास ठाकुर ने एक अपने जोर से थप्पड़ मार दिया हरिचंदन के ऊपर, राजा का सेवक, इतना गुस्सा आ गया उसे। तो राजा इतने महान भक्त थे प्रताप रुद्र, पुरुषोत्तम देव के पुत्र थे, राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि हे हरिचंदन तुम कितने भाग्यशाली हो कि वैष्णव का स्पर्श तुम्हें मिला है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, बल्कि महाप्रभु से भी अधिक वदान्य आए हैं। अब महाप्रभु भी कई बार थोड़े कठोर है, लेकिन नित्यानंद प्रभु सारी जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हैं, जो उनको मार भी प्रदान करता है उसको प्रेम प्रदान करने के लिए दौड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप बस गौरांग का उच्चारण करो, जो व्यक्ति गौरांग के नामों का उच्चारण करता है नित्यानंद प्रभु उसके पीछे पीछे भागते हैं, क्या देने के लिए, ये ले लो कृष्ण प्रेम ले लो, कृष्ण प्रेम ले लो। हाँ कहते आप मुझे खरीद रहे हो, महाप्रभु के नामों का उच्चारण करते हो तो आप मुझे क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की जो दया की कोई सीमा नहीं है, इसलिए लोचनदास ठाकुर इस गीत में कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बिड़ाए। वास्तविक प्रचारक के जो गुण है, प्रचारक की क्वालिटीज है, उसका वर्णन इस गीत में लोचनदास ठाकुर करते हैं कि वास्तव में प्रचारक का एक प्रीचर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, क्या मिशन होना चाहिए, उन सारी चीजों की चर्चा लोचनदास ठाकुर अपने इस गीत में कर रहे हैं। और सर्वोच्च प्रचारक कौन है? नित्यानंद प्रभु है। उनसे बढ़कर परीक्षण कौन हो सकता है? हाँ, हमें अपने परीक्षण का अहंकार होता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहाँ है? परीक्षण के लिए निकले बाहर, लेकिन किस भावना से? अभिमान शून्य नेता है। अभिमान को क्या कर दिया है? शून्य। इस भावना से नित्यानंद प्रभु नगरे विड़ाए, अलग अलग नगरों में, ग्रामों में, स्थानों में प्रचार करने के लिए नित्यानंद प्रभु निकलते हैं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवों के घर घर में जाते हैं, सिलेक्टेड लोगों के घर में नहीं जाते। जैसे हम मैराथन में सिलेक्टेड लोगों को पकड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन यार नित्यानंद प्रभु हर एक व्यक्ति को अपनी जो कृपा है वो प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु बहुत ही वदान्याय है या बहुत ही दयालु है, तो उनकी कई सारी लीलाएं हैं। तो मैं एक थोड़े समय के लिए एक लीला का वर्णन करता हूं, एक या दो लीलाओं की हम चर्चा करेंगे चैतन्य भागवत से, कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु पतित जीवों का उद्धार करते हैं। हाँ, जैसे हम नित्यानंद प्रभु का स्मरण करने मात्र से हमें दो जीवों का स्मरण होता है। कौन से है वो? कौन से है? जोर से जगाई बधाई बोलिए। हाँ, उनके नाम बड़े पवित्र है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनके नामों का उच्चारण करने के लिए कहा है, जगाई बधाई के नामों का उच्चारण करो। कई बार हम कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उनके भक्तों के नाम भी बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होते हैं। इसलिए हमारे एक आचार्य हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नामावली समुद्र, जिसमें उन्होंने क्या किया, सारे वैष्णवों के महाप्रभु के जितने भक्त हैं उनके नामों का वर्णन किया, उनके महिमा का वर्णन किया। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की जो लीला है जगाए बधाए, उस लीला को हम श्रवण करेंगे थोड़े समय के लिए चैतन्य भागवत से। तो हम नवद्वीप चलते हैं आप सबको लेकर। आप सब तैयार हैं नवद्वीप जाने के लिए? तो हम अभी नवद्वीप में हैं, तो जहां चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात नित्यानंद प्रभु से होती है। तो नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व ही हुआ था एक क्षत्र ग्राम में। जैसे महाभारत में वर्णन आता है, जब अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म ने कृष्ण ने क्या किया, अपने वचन को तोड़ डाला। भगवान ने वचन लिया था कि मैं शस्त्र आस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक आस्त्र उठा लिया। भीष्म ने दुर्योधन को कहा था कि आज पांडवों की हत्या होगी, या पांडव मरेंगे या कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। तो आज भीष्म बहुत क्रोध में थे, उन्होंने इतना घमासान युद्ध किया कि कृष्ण थक गए और अर्जुन को मारने वाले थे, तो कृष्ण उतरते हैं और रथ का पहिया अपने हाथ में लेकर, दोनों हाथ में लेकर फेंकना चाहते हैं किसकी ओर? भीष्म की ओर। भीष्म तुरंत अपना क्या कहते हैं धनुष बाण रख देते हैं और कृष्ण के सौंदर्य को निहारते हैं कि उनका जो पीताम्बर है किस प्रकार से पीछे उनका दुपट्टा गिर रहा है, सारे शरीर बाणों के निशान है, ब्लड निकल रहा है और पसीने की बूंदे टपक रही है, हाथ में उन्होंने एक चक्के को पहिए को पकड़ा हुआ है रथ का, और बिल्कुल जैसे कोई शेर दौड़ता है उसी भांति भगवान को देखा, उस सौंदर्य को देखकर भीष्म मंत्रमुग्ध हो गए। और फिर अभी उठाया तो फेंकना पड़ेगा भगवान को, कब तक एक्शन मोड में रहेंगे? हाँ, तो वो फेंका तो कहां फेंका, इतना दूर फेंका, कुरुक्षेत्र से बंगाल। तो वो कहां पहुंचा, बंगाल में एक गांव है जिसका नाम, जो वहां गिरा वो चक्का पहिया रथ का, तो उसका उस गांव का नाम पड़ा एक चक्र। क्या नाम पड़ा?
एक चक्र।
हाँ, दो चक्र नहीं गिरे, एक ही चक्र भगवान ने उठाया था, एक ही पहिया उठाया था। तो उस गांव में पांडव भी गए थे अपने वनवास के रूप में और उन्होंने बकासुर का वध किया था, बकासुर ने बकासुर को उन्होंने मारा था भीम ने, और फिर नित्यानंद प्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके घर में उनके पिता का नाम था हड़ाई, हड़ाई पंडित बंडोपाध्याय या मुखर्जी उनका सरनेम था नित्यानंद प्रभु का। तो ऐसे एक चक्र में उनका आविर्भाव होता है, पद्मावती उनके माता का नाम था। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु थोड़े से बड़े हो जाते हैं उस साल के 10 12 या 15 साल के, तो एक सन्यासी उनके घर आते हैं और उनको उनके पिता को रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा सदैव करता हूँ तो मुझे एक असिस्टेंट की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा आपको क्या प्रदान करूं। पहले तो वो आए उनके घर में सन्यासी और जाते समय उन्होंने पूछा आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा मुझे सेवा के रूप में आपका पुत्र चाहिए। अभी इतना कठिन है पुत्र देना है कि नहीं, प्रभुपाद मांग मांग के थक गए दिल्ली में, आपके पास चार चार बच्चे हैं, एक बच्चा हमें दे दो, मैं उसको कृष्ण भक्ति सिखाऊंगा, गीता भागवत पढ़ाऊंगा, कृष्ण भावना का वो प्रचार कर सकता है, लेकिन हमें ये क्या हजार भी होंगे तो भी आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर प्रभुपाद को अमेरिका जाना पड़ा, फिर वहां बच्चे बाहर माता पिता को छोड़कर हो भी रहे थे, तो उनको प्रभुपाद ने इकट्ठा किया और उनको कृष्ण भावना प्रदान की। तो यहाँ हड़ाई पंडित से जब मांगा पुत्र तो उनके लिए प्राण था, लेकिन फिर भी उनकी सेवा के लिए उन्होंने अकेला पुत्र था, नित्यानंद प्रभु को उनकी सेवा में समर्पित किया। हाँ, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि यही महानता है कि अपनों के लिए छोड़कर जाना दूसरों के हित के लिए। कपिल देव देवोति माता को छोड़कर चले गए है कि नहीं, शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव जैसे वैष्णव पिता को छोड़कर गए, हाँ जन्म लेते ही भाग गए हो कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु अभी अभी उनका विवाह हुआ था, सुंदर युवती पत्नी थी, मदर अकेले थे, उनको छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, किसके लिए, जीवों का उद्धार या कल्याण करने के लिए। तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने भी अपने माता पिता का त्याग करते हैं, एक प्रकार से छोड़कर निकल जाते हैं, अधम पतित जीवे दूसरे जीवों का उद्धार करने हेतु। और 20 साल तक उन्होंने भ्रमण किया, सब जगह गए, भारत के हर तीर्थ स्थान में कई बार लक्ष्मीपति तीर्थ से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और फाइनली वो वृंदावन आए। वृंदावन में सब जगह भ्रमण किया, देखा अरे सारे जो सिंहासन है अल्टर है वो सारे खाली है, क्या कृष्ण कहां चले गए। उन्होंने सबको पूछा कि कोथा है कृष्ण, तो किसी ने कहा कृष्ण ना अभी नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, कृष्ण वहां मिलेंगे आपको, क्या कर रहे हैं वहां, अभी अभी वो गया से आए हैं, गया से आने के बाद वो सदैव हरिनाम संकीर्तन में मग्न रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर नित्यानंद प्रभु वृंदावन को छोड़कर नवद्वीप जाते हैं, चंद्रशेखर आचार्य के घर में उनकी मुलाकात होती है और फिर एक साथ हम महा संकीर्तन में निमग्न रहते हैं। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे वैष्णव मंडली को बुलाया, सारे भक्तों को, और उन्होंने एक विशेष आदेश प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने दो प्रमुख भक्तों को, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा कर प्रकाश, प्रति घर घर गया कर भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि हे नित्यानंद प्रभु सुनो, हे हरिदास तुम सुनो, क्या सुनो, मेरी आज्ञा का पालन करो और इस आज्ञा को सब जगह प्रकाशित करो। और मेरी आज्ञा क्या है, प्रति घरे घरे गया, हर 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 घर में चले जाओ और हर घर में जाकर भिक्षा मांगो, क्या मांगो, भिक्षा, कौन सी भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तीन चीजों की भिक्षा मांगो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। उन्होंने कहा इसके अलावा आपको कुछ और नहीं बोलना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं और इसके अलावा उनसे कुछ और नहीं मांगना चाहिए और इनके अलावा उनको कुछ और बोलने भी नहीं देना चाहिए, ये प्रचारक का काम है। महाप्रभु कहते हैं अब तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको बोलते हैं और कहते हैं कि जब तुम जाओगे प्रचार करोगे जब लेकिन वापस आओगे संध्या के समय में मुझे रिपोर्ट देना भूलना मत। हाँ, कोई ना कोई हमारा अथॉरिटी होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए जिनको हम क्या करें रिपोर्ट देते रहे। हाँ, कि मैं ये सर्विस करके आया हूँ। तुम्हारा करीने भिक्षा जय नाम तबे आवी चक्र हस्ते सवारी काटी ब। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो व्यक्ति इस प्रकार की भिक्षा तुम्हें नहीं देगा तो मुझे आकर बताओ मैं क्या करूंगा। यदि उसने भिक्षा नहीं दी तो मैं अपने हाथ में अपने चतुर्भुज को प्रकट करके चक्र हाथ में लूंगा और उस व्यक्ति की गर्दन को अलग कर दूंगा। इतने महाप्रभु उस दिन अलग मूड में थे। हाँ, तो ये जब सुना तो सारे वैष्णव जोर जोर से हंसने लगे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी महाप्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करने की। सब सुन रहे थे, चुप चुप से सुन रहे थे। फिर क्या हुआ तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये दोनों निकल पड़े। आज्ञा पाए दुई जने बोले घरे घरे बोल कृष्ण गाओ कृष्ण बज कृष्ण रे कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन हे न कृष्ण बल भाई यही एकवान। तो वो जब निकल पड़े तो सब जगह जाकर बोलते थे कृष्ण बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण का भजन करो। अरे कृष्ण ही तुम्हारे धन प्राण है, कृष्ण ही आपके जीवन है। हाँ, एकाग्रता से कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। इस प्रकार से ये दोनों महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए निकले लेकिन इन दोनों का जो वेश था वो एक प्रकार से सन्यासियों का वेश था। तो जो लोग थे जो सज्जन व्यक्ति थे साधु वृत्ति के लोग थे उनको देखकर बड़े आनंदित हो जाते थे, बहुत सुखी हो जाते थे। तो इन दोनों को देखकर अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग चर्चा करते थे। कोई कहता था कि ये बिल्कुल मंत्र जप कर करके पागल हो गए हैं। हाँ, और ये खुद पागल है और हमें पागल करने के लिए आए हैं और ये जो अच्छे लोग हैं उनको भी पागल बना रहे हैं। हर दिन से कोई व्यक्ति हरे कृष्ण का मंदिर आने लगता है थोड़ा सा जप करना शुरू करता है तो जो थोड़े से डिफरेंट प्रवृत्ति के होते हैं तो कहते आया ये हरे कृष्ण वाला आ गया देवा खाएगा भी। हाँ, पागल आ गया। जब भी बात करो तभी यही बोलते रहता है मंदिर आओ जप करो बहुत सारी चर्चा करता है। तो लोग भक्तों को पागल सोचते हैं समझते हैं और फिर वो लोग कहने लगे वो जो नवद्वीप में जो निमाई है गौर सुंदर है वो खुद पागल है और जो भी उसके संपर्क में आ रहा है उसे भी उसने पागल कर दिया है। तो कोई व्यक्ति कहते थे कि ये जो दो लोग हैं ये बहुत बड़े चोर हैं, साधुओं के सन्यासियों के वेश में आकर हमारे घर में ये बहाना बनाकर आते हैं कि आप 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 हरि नाम लीजिए लेकिन घर में आते हैं तो ध्यान हमारे वस्तुओं में होता है। आप भजन करने के लिए घर में आते हैं हरि नाम करने के लिए घर में आते हैं लेकिन ध्यान किस पर है हमारे वस्तुओं पर ध्यान में है। घर में कौन सी चीज कौन से स्थान में है कैसे उठाई जा सकती है कैसे धोखा दिया जा सकता है। तो ये दोनों चोर घूम घूम के आकर देखते हैं और चोरी करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार से लोग बहुत कुछ लोग भयभीत थे कुछ लोग निंदा करते थे। तो लोग जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु हंसते थे लेकिन उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं था क्योंकि उनके प्रभु कौन है चैतन्य महाप्रभु है। आवारा प्रभु र प्रभु श्री गौर सुंदर बोलिए। वो कहते हैं वहां नित्यानंद प्रभु कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे प्रभु के जो प्रभु है वो गौर सुंदर है। वृंदावन दास ठाकुर का जो आकर्षण था और नित्यानंद प्रभु के लिए सर्वाधिक था। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु जब निकल पड़े तो उनको दो विशेष व्यक्तित्व नजर आए। हाँ, जैसे इस वन में सब कुछ महा है, महाप्रभु, हाँ, महाप्रसाद, हाँ, क्या है, महामंत्र, महाअभिषेक, महामहोत्सव, तो सब कुछ महा है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये दो थे ना, उनमें भी सब कुछ महा था, महाप्रियकर, महामत वाले, महादशो, महापति। वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सारा महा महा यूज किया है। तो ऐसे है जो जगाए मगाए थे उनमें बहुत अधिक पापमय जीवन उनका भरा हुआ था, पापमय जीवन से वो भरे हुए थे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ब्राह्मण हया मध्य गोमांस भक्षण, डाका चोरी परग्रह दाहे सर्वक्षण। तो ब्राह्मण होकर भी मद्यपान करना, गोमांस का भक्षण करना, चोरी करना, डाका डालना, दूसरों के घरों को लोग अंदर है तो ये दो पेकड़ सीधा जला देते थे, ऐसे भयानक थे। रास्ते में लोटपोट हो जाते थे, कोई दिखाई दे रास्ते में पकड़ के उसको मार देते थे, और जो कोई नहीं मिले तो एक दूसरे के बाल खींचते रहते थे, एक दूसरे को मारते रहते थे, और अश्लील शब्दों का उपयोग करना उनके लिए सर्व सामान्य था। तो इस प्रकार से ये दोनों से सारा नवदीप एक प्रकार से डरता था, भयभीत था, कोई उनके सामने जाने के लिए इच्छा नहीं करता था। वो सामने आए तो रास्ता बदल कर लोग भाग जाते थे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इतने सारे पाप दुराचार आदि इन्होंने किए थे, लेकिन फिर भी एक चीज से ये मुक्त थे, जिनके कारण उनको एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उनको प्राप्त हुई। अहर्निश मध्य मेरा संग रंगे था के, नहीं न वैष्णव नेता यही सब पाके। उन्होंने बहुत सारे पाप आदि किए थे, लेकिन कभी भी वैष्णव अपराध उन्होंने नहीं किया था, वैष्णव के निंदा आदि उन्होंने नहीं किए थे। तो इसी कारण से वो एक प्रकार से कृपा के पात्र थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शूल पाणी हय जदि, शूल पाणी मीन्स जो त्रिशूल धारण करने वाले जो शिवजी है, जो वैष्णवानाम यथाशंभु सर्वश्रेष्ठ है, वो भी वैष्णव अपराध करे तो भी पतन निश्चित है। तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सन्यासी होकर भी यदि वैष्णव अपराध करता है, वैष्णव निंदा करता है, तो वो भी अपने आध्यात्मिक जीवन से गिर सकता है। हाँ, तो फिर इन दोनों ने, दोनों को जब देखा तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने पूछा, ये जो दो सामने लोग दिख रहे हैं, बताइए बताइए कौन है, इनका जाति क्या है, कुल क्या है, कर्म क्या है। तो लोग उनके बारे में बोलने में डरते थे। किसी एक ने कहा ये तो बहुत ब्राह्मण के पुत्र है, दिखने में तो ब्राह्मण नहीं लगते थे, पुत्र हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मण है, जगाए और बधाए, ब्राह्मण जैसे उन्होंने जन्म लिया तब से ये पाप कर्म करने में रत है, असत संग के कारण, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो जगदानंद और माधवानंद, क्या नाम था इनका, कितना आनंद था इनके नाम में, है ना, आनंद को हटा दिया, अभी नित्यानंद प्रभु को आना पड़ा, अब फिर से नामकरण हुआ इनका। तो ये जो जगाई और मदाई थे, इतने पापों में निमग्न थे, जब नित्यानंद प्रभु ने ये सोचा, ये सुना, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। नित्यानंद प्रभु का हृदय बहुत करुणा से भरा हुआ है, बहुत मृदु है। तो उन्होंने उनको तुरंत चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हो आया। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, पातकी तारिते प्रभु कैला अवतार, एवत पातकी को था पाई वेदहार। तुरंत महाप्रभु का स्मरण आया। उन्होंने सोचा, अरे ये तो चैतन्य महाप्रभु है, मेरे प्रभु गौर सुंदर है, उनका अवतार तो पातकी लोगों का उद्धार करने हेतु हुआ है, और इनसे अधिक पातकी कौन मिलेगी, मौसम पतित प्रभु ना पाएगी यार। तो महापतित यही लोग हैं, यदि इन दो जीवों का उद्धार हो जाएगा तो मेरे प्रभु जो गौर सुंदर है उनका जो नाम है और उनका आने का जो कार्य है वो सार्थक हो सकता है, उनका यश त्रिभुवन में फैल सकता है। मोरव मोर प्रभु बलि जदे कांदे दुई जान, तबे से सार्थक मोर जत पर्यटन। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं जो नगर नगर में प्रचार के लिए घूम रहा हूँ ना दिन रात हरिदास ठाकुर के साथ, ये जो मेरा पर्यटन है ये तभी सफल हो जाए हो सकता है या हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी यदि ये जो जगाई और मधाई क्या करे, मोर प्रभु कह के रो पड़े महाप्रभु के लिए। क्या कह के रो पड़े? मोर प्रभु मीन्स मेरे प्रभु है। एक्चुअली यही परफेक्शन है आध्यात्मिक जीवन का। जीव ये अनुभव करे कि अमी तुया दास। भक्तिरो ठाकुर कहते हैं कि जीव केवल यह अनुभव करे कि हे कृष्णा तुम्हारा चरण छाड़ी है नु सर्वनाश, मैं तो आपका सदैव किंकर हूं दास हूं, और हे कृष्णा आप मेरे हो, इस भावना का उदय हृदय में होना ये वास्तव में साक्षात्कार है। और मैंने आपके चरणों को छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है जिसके कारण अब मेरा सर्वनाश हो गया है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु इनके बारे में सोच ही रहे थे, और उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से इन दोनों की छाया भी किसी के ऊपर पड़ती है तो लोग भाग भाग के जाके गंगा स्नान करते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे बनाना चाहता हूं इनके नाम का यदि कोई उच्चारण करेगा तो गंगा स्नान से भी अधिक पवित्र हो जाएगा, और इनका स्पर्श करने मात्र से, इनको देखने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाना चाहिए, ऐसी इच्छा नित्यानंद प्रभु के हृदय में थी। तो हरिदास ठाकुर कहते तुमने जो सोचा है ना, फिर इनको इनका उद्धार करने से कोई रोक नहीं सकता, इनका उद्धार निश्चित है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है वो आप करो, और बाकी जो भी हो जाए हमारे साथ संभालने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, हमेशा महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे। तो इस प्रकार से लोगों को जब पूछा तो लोग उनके पास जा रहे थे जगाई बधाई के पास, लोग तो डर रहे थे। इन्होंने कहा आप अपने यदि कुशल मंगल चाहते हैं ना उनके ज्यादा नजदीक मत जाइए दूर से। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं, नित्यानंद प्रभु तो ज्यादा ही चंचल है, इतने अधिक चंचल है। उन्होंने कहा नहीं जाके रहूंगा मैं, अभी हरिदास ठाकुर थोड़े पीछे पीछे रहते उनके। नित्यानंद प्रभु गए उनके नजदीक, और बहुत नजदीक भी नहीं गए, अपनी आवाज उनको सुनाई दे ऐसे वो वहां खड़े हो गए, और वो बिल्कुल नशे में चूर थे, बिल्कुल पी लिया था उन्होंने बहुत अधिक सुबह से, और पड़े हुए थे अपना सर नीचे करके, और वहां नित्यानंद प्रभु खड़े हो जाते हैं। प्रकांड शरीर, उनका शरीर प्रकांड है, और ऐसे खड़े होते हैं पूरे साहस के साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ताकि जगाए बधाई को सुनाई दे। वो कहते हैं बोलो कृष्ण वज कृष्ण लह कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण तो सवा लागे या कृष्ण अवतार हे न कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार। अब इतना बड़ा उपदेश पियकड़ों को दिया जा रहा है, शराबियों को। वो कह रहे कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण माता है आपकी, कृष्ण आपके पिता है, कृष्ण आपके आश्रय धन है, और कृष्ण का प्राकट्य आप दोनों का उद्धार करने के लिए हुआ है, और यदि आप क्या करो ऐसे कृष्ण के चरण कमलों का भजन करो ये सारा अनाचार इसको छोड़ो। कृष्णेर संसार छाड़ी कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार। तो दोनों ने जैसे कि तेज आवाज उनके कानों में गई, ऐसे नीचे सर था ऐसे ऊपर देखा, सर को थोड़ा ऊपर कर दिया उन्होंने, और महाक्रोध, यहां भी महा था, क्रोध कैसे था, महाक्रोध, आंखें रक्त वर्ण की हो गई थी, लाल लाल आंखें हो गई थी, और वैसे वो उठ गए चिल्लाने लगे जगाए बधाई। उन्होंने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किसको पकड़ो? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को। जैसे ही दोनों ने सुना भागने लगे, नित्यानंद प्रभु तो बहुत तेज है भागने में, उनको कौन पकड़ सकता है, दौड़ने लगे। हरिदास ठाकुर भी भागने लगे, हरिदास ठाकुर की आयु बहुत अधिक थी, वो इतना भाग नहीं सकते थे, लेकिन अभी गलत जो प्रचारक उनका मित्र था उनके संघ के कारण उनको भी भागना पड़ रहा था। तो जो पाखंडी लोग थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे, अच्छा हुआ ऐसे होना चाहिए तुम्हारे साथ, अब बढ़े आए प्रचार करने वाले। और फिर कुछ जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के थे सज्जन थे वो कहने लगे, हे कृष्ण इनकी रक्षा करो, हाँ इनकी रक्षा करो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, आज तो प्राण बच जाए तो ठीक है, सब कुछ हमें मिल जाएगा, आज हमारा प्राण की रक्षा हो जाने चाहिए। नित्यानंद हरिदास ठाकुर कहते, तुम्हारे साथ रहूंगा ना तो रोज ही मुझे मृत्यु के मुंह में रहना पड़ेगा। तो ये दोनों भाग रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम्हारे साथ रहना बहुत कठिन है, तुम बहुत अधिक चंचल प्रवृत्ति के हो, मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार से प्रचार कार्य में भाग लूंगा, तुम्हारी चंचलता के कारण मुझे अपनी जो जान है लाइफ है वो गंवाना पड़ेगा। कहते कि तुम क्या मुझे चंचल कह रहे हो, मुझे पागल कह रहे हो, मैं चंचल नहीं हूं, ये आज्ञा देने वाला है ना वो चंचल है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते जिसने ये ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर जिसने पास किया है उसके बारे में सोचो, वो पागल है, वो अपने आप को समझता क्या है, राजा के जैसे आज्ञा देता है। कहते कि हे हरिदास, हे नित्यानंद, जाओ घर घर में जाओ और जो भी मिलेगा उसको कृष्ण कहलाओ। हाँ, तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से हम मजाक कर रहे थे या फिर चर्चा कर रहे थे, लेकिन भाग रहे थे। ये सब बातें कैसी हो रही है, भागते भागते हो रही है। और जगाए मदाए वो तो चिल्लाते हुए भाग रहे, पकड़ो मारो पीटो। और वो मोटे थे, हटे कटे ना, थोड़े फूले हुए थे, तो वो भाग रहे थे। तो भागते भागते ये सारा जो दोनों का टीम है ये आगे आगे दौड़ते दौड़ते गए कि बहुत थक गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अभी उसे चला नहीं जा रहा है। तो पीछे देखा तो देखा वो रुक गए, तो वो बिल्कुल स्टॉप हो गए थे। और फिर ये दोनों पहुंचे जहां चैतन्य महाप्रभु अपने सारे वैष्णव मंडली के साथ बैठे हुए थे ऊंचे स्थान पर और सबसे रिपोर्टिंग ले रहे थे। अभी ये दो व्यक्ति महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर पहुंचे दौड़ते दौड़ते। और उन्होंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अभी हम अपनी जान बच के यहाँ पहुंचे आपके पास। तो नित्यानंद प्रभु ने सारी घटना बताई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कौन है वो, कौन क्या है, उनका थोड़ा विस्तार से वर्णन करो। तो उस मंडली में श्रीवास ठाकुर, गंगादास, हाँ ये दो बैठे थे, तो उन्होंने पूरा उनका हिस्ट्री बता दिया। तो महाप्रभु ने कहा, ऐसे इतने पतित है, मैं ना उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाप्रभु क्या कहते हैं, मैं उनके खंड खंड कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं, आपका अवतार हुआ है पतितों को पावन करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, भक्ति प्रदान करके। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब इन दोनों ने तुम्हारा दर्शन किया है तो इसके द्वारा ही उनका उद्धार होकर रहेगा। तो वास्तव में तुम उनका चिंतन कर रहे हो और उनका उद्धार निश्चित रूप से होगा। जैसे महाप्रभु ने कहा तो सारे वैष्णव हरि हरि का उच्चारण करने लगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये बहुत अधिक चंचल है, ये जो नित्यानंद प्रभु है। हाँ, उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु के साथ मैं जब भी जाता हूं तो उनकी चंचलता से मैं बहुत भयभीत रहता हूं। कभी आप पानी लाने के लिए भेजते हो गंगा में, तो पानी लाने के बजाय वो मगरमच्छ को देखते हैं गंगा में और उसके ऊपर जाके बैठते हैं, कहते हैं मैं अभी सवारी करके आता हूं। हाँ, मगरमच्छ राइड क्या कहते हैं उसको। हाँ, तो इस प्रकार से वो जाते हैं, कई बार मगरमच्छ के ऊपर खड़े होकर हाय हाय कहने लगते हैं। अब कभी कभी जो गंगा बहुत तेजी से बहती है उसमें कई किलोमीटर दूर जाते हैं, हाँ, बहते हुए और फिर वापस आते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, हाँ, कि मुझे हमेशा तंग करते हैं। फिर कभी कभी वहां कुछ कन्याएं अविवाहित युवतियां जब आती है पानी भरने, तो उनको कहते आप मुझसे विवाह करोगी, तो कहते उनके जो पिता माता आते डंडा लेकर मारने के लिए, हरिदास ठाकुर कहते मुझे उनके चरण पकड़ने पड़ते कि आप क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से सारे वैष्णव मंडली में नित्यानंद प्रभु की जो दिव्यता है हाँ, जिनका वर्णन हरिदास ठाकुर करते जा रहे थे और फिर बाद में उन्होंने कहा, कभी कभी कोई जो ग्वाल बाल है, कोई बैल चरा रहे होंगे तो एक बैल के सांड के ऊपर बैठते कहते कि मैं महेश हूँ, मैं शिव हूँ। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर उनका गुणगान करते एक प्रकार से, और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनका उद्धार होगा क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने सोचा है। नित्यानंद प्रभु की दृष्टि में कोई व्यक्ति आता है, कैसे आएगा? जब हम सेवा करते हैं आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से। तो वास्तव में नित्यानंद प्रभु का जो साइड ग्लांस है, दृष्टिपात है, वह हमारे ऊपर होता है और निश्चित रूप से हम कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो फिर एक दिन नित्यानंद प्रभु संध्या के समय ऐसे बाहर गए और जब वापस लौट रहे थे पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते करते, तो उनको जो ये जीवात्माएं मिली कौन थे? जगाए और बधाए। फिर जगाए बधाए ने पूछा, पकड़ा उनका हाथ, कौन हो तुम? अभी ये भी तो महान है, सरल अपना नाम नहीं बताएंगे, अभी बोलना चाहिए ना मैं नित्यानंद प्रभु हूं। उन्होंने कहा मैं अवधूत हूं। उन्होंने कहा अवधूत मजाक उड़ाता है? तो उन्होंने क्या किया, क्रोध में आ गए, पिए हुए थे शराबी, उन्होंने क्या किया, तुरंत बधाई ने वहां एक मटके थी टूटी हुई, उसका एक टुकड़ा उठाया और जोर से नित्यानंद प्रभु के सर में प्रहार किया और उसी क्षण जो ब्लड है, रक्त है, वो निकल, रक्त की धारा बहने लगती है और नित्यानंद प्रभु कुछ बोलते नहीं है। नित्यानंद प्रभु गोविंद का स्मरण करने लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने लगते हैं और एक प्रकार से वो हंस रहे थे। और एक बार मधाई फिर से एक टुकड़ा और उठाता है मारने के लिए, तो जगाए उसको रोकता है, हाथ पकड़ता है, अरे ये सन्यासी है, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों इनको मार रहे हो? तो इस प्रकार से हाथ पकड़ता है और उनको रोकता है। तो उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं अपने सारे भक्तों के संग में। और चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के सर से रक्त की धारा बह रही है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और चक्र चक्र कहते हुए गर्जना करते हैं। जगाए बधाई चक्र को देखते ही मूर्छित हो जाते हैं, डरते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते नहीं नहीं, इनको मारने की आवश्यकता नहीं है, हे चैतन्य देव आप क्या करो, देखो ये जो जगाई है ना, इसने मेरी रक्षा की है, इसने मुझे बचाया है। महाप्रभु सब भूल गए, जगाई का आलिंगन किया, थोड़ी सी सेवा की थी, किसकी? नित्यानंद प्रभु की। और ऐसी थोड़ी सी सेवा के द्वारा जगाई का उन्होंने कहा कि आप क्या करो है चैतन्य देव, आप मुझे ये दो शरीर है वो दान के रूप में मुझे प्रदान करो, ये मुझे दोनों शरीरों को दे दो, एक प्रकार से इनके ऊपर अपनी करुणा का वर्षाव करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे जगाए, तुमने नित्यानंद प्रभु को बचाया है एक प्रकार से, इसी कारण से नित्यानंद की थोड़ी सी सेवा तुमने की है, तुमने मुझे खरीद लिया है। क्या किया है? खरीद लिया है। वास्तव में यही है, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की सेवा में रत होता है तो कृष्ण उसके ऋणी हो जाते हैं, यश प्रसादात भगवत प्रसाद। और कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है जो व्यक्ति मेरे भक्तों को प्रसन्न करने में अपना जीवन लगाता है। इस प्रकार से जगाए के द्वारा जब बचाए सुनकर महाप्रभु उसका आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि जगाए मांगो, क्या वर चाहिए, मैं तुम्हें दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम भक्ति है वो प्रदान कर रहा हूं। ये बोलते ही सारे वैष्णव जोर जोर से हरि का उच्चारण करते हैं और जो जगाई है मूर्छित हो जाते हैं। और फिर महाप्रभु कहते उठो उठो, तो उठकर जगाई बधाई दोनों चैतन्य महाप्रभु का चतुर्भुज रूप देखते हैं। तो ऐसे बधाई ने पत्थर मारा था या मटकी का टुकड़ा मारा था जिसके द्वारा वो बहुत लज्जित हो गए थे, ग्लानि से पश्चाताप से उनका हृदय भर गया, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा नहीं नहीं, नित्यानंद प्रभु के चरणों में आपको गिरना होगा। तो उनके चरणों को जाकर पकड़ते नित्यानंद प्रभु के और वो कहते कि आप मुझे कृपा करो। तो नित्यानंद प्रभु बधाई का आलिंगन करते हैं और अपने आलिंगन के द्वारा अपनी जो सारी शक्ति है मधाई में प्रदान करते हैं। फिर दोनों जगाई मधाई स्तुति करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे जगाई मधाई, आज से क्या करो, आप ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करना छोड़ दो। तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं। महाप्रभु ने कहा आप दोनों सारे पाप कर्मों से मुक्त हो, आप दोनों का सारा जो पाप है इसका दायित्व उत्तरदायित्व मैं ग्रहण कर रहा हूं, और आप दोनों अभी मेरे साथ चलो। तो चैतन्य महाप्रभु उनको अपने स्थान में ले जाते हैं। वहां जाकर जगाई बधाई महाप्रभु की बहुत बड़ी स्तुति करते हैं, और महाप्रभु कहते हैं कि किसी को लगेगा कि मैंने जगाई बधाई के पाप ग्रहण नहीं किए, तो इसको साक्षात अनुभव करने हेतु या दिखाने हेतु जो चैतन्य महाप्रभु है सबके सामने जब जगाई बधाई का आलिंगन करते हैं तो उनका शरीर जो गौर वर्ण है वो क्या हो जाता है, कृष्ण वर्ण, बिल्कुल काला हो जाता है। गोरा चांद क्या बन जाता है, काला चांद। तो ऐसे जब काले हो गए वो दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि वास्तव में मैंने जगाई मदाई के सारे पापों को स्वीकार किया है, इसके बाद आपको पुनः पाप नहीं करने हैं। जब अद्वैत आचार्य को पूछा अद्वैत आचार्य कैसे दिख रहा हूं मैं, तो अद्वैत आचार्य कहते आप ना गोकुल चंद्र लग रहे हैं, वृंदावन के कृष्ण लग रहे हैं, क्योंकि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। तो फिर महाप्रभु कहते अभी ये काला शरीर है, ये पाप एक प्रकार से मुझ में है, तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इसको छोड़ूंगा तो किसके ऊपर छोड़ूंगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक बोला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु बोले काला देख दुईर पात के कीर्तन कर सब जाऊ कनिंद के। उन्होंने कहा देखो मेरे इस काले देह को, और आप सब लोग जोर जोर से कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे महाप्रभु का जोर से कीर्तन करो। और जो व्यक्ति कीर्तन नहीं करेगा और वैष्णव की निंदा करेगा, महाप्रभु का जो जाय सब निंदके, जो व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है जगाई मदाई के सारे पाप जाकर उस व्यक्ति के शरीर में आश्रय ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण जगाई मदाई का उद्धार करते हैं। जैसे मैंने कहा मारक खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है, वास्तव में नित्यानंद प्रभु से अधिक दयालु कोई और नहीं है। तो आज हमें मौका है नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करने का, उनकी लीलाओं का स्मरण करने का और उसे याचना करने का कि हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करें जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक गुरु वैष्णव और हरिराम की सेवा कर सके। नित्यानंद राम की, गौर सुंदर की, नित्यानंद त्रयोदशि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। छोटा सा सॉन्ग गाते हैं, तब एक छोटा सा गीत गाते हैं तीन चार मिनट के लिए। परम करुणा दुर्वा प्रभु पाठक तो ये गीत है लोचनदास ठाकुर का। लोचनदास ठाकुर ने सर्वाधिक गीत लिखे हैं नित्यानंद प्रभु के गुणगान में। परम करुणा पवतु जाना नेताई गौर चंद्र, परम करुणा पवतु Oh, sorry.
Thank you.
महाप्रभु की गौर प्रेमणते।